भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना श्लोक संख्या 36। अथ अवगत महात्मा आत्मनो जगदात्मना अपरिज्ञेय वीर्यस्य नामेने तदहात्मकम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अथ इस प्रकार अवगत आश्वस्त होकर महात्मा महानता आत्मन अपने जगत आत्मन तथा भगवान के अपरिज्ञ वीर्यस्य असीम शक्तिमान ना नहीं मैंने विचार किया तत् मोहित करने में भगवान के अद्भुत क्रिय कार्यकलापों को। ओहो निश्चय ही अद्भुतम मानो अद्भुत। अनुवाद। इस प्रकार शिवजी को अपनी तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। तात्पर्य, भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं क्योंकि कोई उन्हें किसी भी कार्य में पिछाड़ नहीं सकता। भगवद गीता 7:7 में भगवान कहते हैं मतः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय। हे धन के विजेता, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। कोई ना तो भगवान की बराबरी कर सकता है ना ही कोई उनसे बढ़कर है क्योंकि वे सबके स्वामी हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:142 में कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य। भगवान कृष्ण सबके यहां तक कि शिव जी के भी एकमात्र स्वामी हैं, तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए। शिव जी पहले से भगवान विष्णु की परम शक्ति से अवगत थे किंतु जब वे सचमुच मोह में पड़ गए तो उन्हें अपने महान स्वामी पर गर्व हुआ। ओम अज्ञानस्तमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकरामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के स्थापित कक्षा में। बहुत ही रोचक प्रसंग चल रहा है। अध्याय का नाम ही है मोहनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। बड़ी सनसनीखेज खबर है। शिव जी जो धीर कहलाते हैं मोहनी मूर्ति पर मोहित हो गए। लेकिन मोहनी मूर्ति कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं भगवान। और ये भगवान उनके प्रिय भक्त शिव जी के बीच में लीला है। जब भी हम लीला भागवतम में पढ़ते हैं, भागवतम में लीलाओं का मुख्य उद्देश्य भगवान और उनके भक्तों का गुणगान करना है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि शिव जी मोहित हो गए, ऐसे उनका कोई पतन हो गया। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे शिव जी का बहुत गुणगान हुआ, और भगवान का तो गुणगान है ही है। जब भी हम कोई लीला सुनते हैं तो हमारे वरिष्ठ भक्त हमें बताते हैं कि उस लीला को समझने के तीन स्तर है। एक स्तर है आदिदेविक स्तर। आदिदेविक स्तर यानी कि दिव्य स्तर। भगवान अपने दिव्य गुणों के साथ, अपने दिव्य भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। दिव्य स्तर यानी कि प्रकृति के तीन गुणों से परे, उसको हम अपने इस रोज के साधारण जीवन के अनुभवों से उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो ये लीला बिल्कुल दिव्य है। शिव जी तीन गुणों से परे हैं, भगवान तो त्रिगुणातीत है, और उन दोनों के बीच में आदान प्रदान, तो ये बिल्कुल दिव्य स्तर पे है। तो एक स्तर तो ये है कि हम दिव्यता को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और उसका गुणगान करें। दूसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर, यानी कि मेरे लिए इसमें क्या है, मैं इसको अपने जीवन में कैसे सीख सकता हूं, क्या प्रिंसिपल्स है। तीसरा अधिबौद्धिक स्तर, यानी कि दूसरों को प्रचार की दृष्टि से क्या इसको इस लीला से समझाया जा सकता है। तो आज ये तीनों बातें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और विशेषकर इस श्लोक में हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहां जैसे बताया है अथा अवगत महात्म्य, अथ इस प्रकार, जबकि किस प्रकार, जब भगवान शिव मोहिनी के पीछे बिल्कुल पागल हो गए, जैसे कहते हैं सब कुछ भूल गए और भाग रहे एकदम पागलों की तरह उनके पीछे, और भगवान भी उनको नचा रहे, एकला ईश्वर कृष्णार संभ्रत यार जैसे जैसे करे नृत्य। ऐसे कहां कहां नचाया, संतों के बीच में, ऋषियों के बीच में जो शिव जी की पूजा करते थे उनके सबने देखा, देखो शिव जी की क्या हालत हो रही है, इतने बड़े योगी और भाग रहे हैं एक सुंदर स्त्री के पीछे। और आप देखिए उनका वीर भी स्खलित हो गया, वीर स्खलित हो जाए सबके सामने, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी, आप बताइए। लेकिन जब वीर स्खलित हुआ और मोहिनी मूर्ति जो है वो अप्रकट हो गई, तो भगवान शिव को दोबारा अपनी विवेक बुद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने देखा इस प्रकार अवगत, अब वो समझ गए क्या है ना, पूर्ण रूप से समझ गए, कन्विंस हो गए, आश्वस्त हो गए, महात्म्य ग्रेटनेस, वाह क्या पोजिशन, क्या भगवान की क्या महानता है, बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई। महात्म्य आत्मनो, अपनी स्थिति भी मालूम चल गई कि मैं कितना ग्रेट हूं, जगत आत्मना और भगवान कितने ग्रेट हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अपरिज्ञ वीर्य से असीम शक्ति वाले ना मैंने तदहु अद्भुतम, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से मुझे मोहित किया है ये केवल वही कर सकते हैं, क्योंकि वो अपरिज्ञ वीर्य से है। तो यहां पर शिव जी अपनी और भगवान की स्थिति की तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरे को अपनी स्थिति भी मालूम चल गई और भगवान की स्थिति भी मालूम चल गई। तो पहले इस विषय में चर्चा करेंगे शिव जी की और भगवान की विष्णु की तुलनात्मक स्थिति क्या है। और दूसरा श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया, और तात्पर्य के अंतिम वाक्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं शिव जी पहले से भगवान विष्णु की परम शक्ति से अवगत थे, किंतु जब वे सचमुच मोह में पड़ गए तो उन्हें अपने महान स्वामी पर गर्व हुआ। शिव जी के इस इस घटना के बाद शिव जी पहले से अवगत है कि कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से मोहित होने पर उनको अपने स्वामी पर गर्व हुआ। तो ये गर्व कैसा है, ये दिव्य गर्व, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दो विषय हैं आज के। तो पहले शिव जी मोहित हो गए भगवान से। प्रश्न उठता है कि यही मोहिनी अवतार देवताओं के सामने भी प्रकट हुआ, असुरों के सामने प्रकट हुआ, कौन मोहित हो गए थे? देवता के असुर, असुर प्रकट हो, असुर मोहित हो गए, और देवता तो बिल्कुल मोहित नहीं हुए, और शिव जी तो महादेव हैं, तो शिव जी कैसे मोहित हो गए? शिव जी तो महादेव हैं, जब देवता मोहित नहीं हुए तो महादेव कैसे मोहित हो गए? कुछ कहने को है, बिगड़ ये प्रश्न ही बड़ा मोहित करने वाला है। हाँ, भगवान की योग माया तो पहले भी थी, क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा थी शिव जी को मोहित करना है। शिव जी अपने भार्या दुर्गा देवी और अपने पार्षदों के साथ आए, भगवान मैं आपका रूप देखना चाहता हूं। भगवान बड़े गंभीरता से सोच रहे थे, ये तो महामाया के पति हैं और ये तो कभी मोहित होते नहीं, और अब इनको मोहित करना है मुझे, और मुस्कुरा भी रहे थे। देख लो, सोच लो, अपने रिस्क पे कर रहे हो, मैं तो कर तो दूंगा लेकिन दिखा दूंगा, लेकिन देख लो आपके ऊपर है। भगवान गंभीर भी थे, मुस्कुरा भी रहे थे। गंभीर यह थे कि मेरे प्रिय भक्त ने एक मेरे से डिमांड की है। भगवान इतने कृपालु हैं, जैसा भक्त चाहते हैं वैसा अवतार ले लेते हैं, जिस रूप में वो चाहते हैं। अच्छा, मुझे मोहिनी रूप में देखना चाहते हो, अच्छा दिखाऊंगा, लेकिन गंभीर इसलिए कैसे इसको मोहित करो, क्योंकि मोहिनी अवतार का मतलब ही है जो मोहित करे, और ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। और जब भगवान देवताओं के सामने प्रकट हुए थे, असुरों के सामने, तब ये भगवान का अभिप्राय नहीं था, तब केवल एक ही इच्छा थी कि असुरों को मोहित करना है, इसलिए देवतागण मोहित नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि देवताओं में शिव जी से ज्यादा धैर्य था, भगवान की इच्छा थी इसलिए शिव जी मोहित हुए। तो जब शिव जी स्थिति में आ गए, मोहिनी अप्रकट हो गई, और जब शिव जी अब शांत हो गए, तो अब उनको समझ में आया कि ये भगवान ने ही मुझे मोहित किया, और भगवान ने ही अब मुझे विवेक बुद्धि दी है, ये सब भगवान के ही कारण है, सर्व कारण कारणम, सब कोई वही है। और ये सोचकर उनको बहुत आनंद आया, उनको कोई गिल्ट महसूस नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया, मेरी सारी रेपुटेशन खराब करवा दी आपने, कहां कहां ले गए, दिखाना था चुपके से दिखा लेते, और जानबूझकर आप उन पर्वतों के बीच में ले गए, गुफाओं में ले गए, जहां सब ऋषिगण तपस्या कर रहे थे, इतनी मतलब की बुरी हालत कर दी आपने मेरी, कहीं का भी नहीं छोड़ा, मैं क्या दिखाऊंगा, किस ढंग से लोग मेरी पूजा करेंगे, कोई गिल्ट नहीं था, कोई द्वेष नहीं था भगवान से, बड़ा अपना दिखा दिया, मेरी क्या हालत कर दी है? कुछ नहीं, गर्व हो गया उनको और बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। उनको पहले से जो आपको अवगत थे कि विष्णु परम पुरुषोत्तम है, लेकिन अब ये साक्षात्कार और गहरा हो गया, और जैसे जैसे साक्षात्कार गहरा होता है, आध्यात्मिक जीवन में आनंद और बढ़ता है। भक्त अपने यश और अपयश की कोई चिंता नहीं करते, वो तो हर परिस्थिति में भगवान का गुणगान देखना चाहते हैं। तो शिव जी इस स्थिति में भी भगवान की महिमा को देख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं, आप सोचिए, हम लोगों के अभी थोड़ी थोड़ी भक्ति शुरू की है, यश मिलना शुरू हो जाता है, उस यश पे थोड़ा सा आघात पहुंच जाए, हम डिप्रेस हो जाएंगे, सबके सामने ऐसा कह दिया, और ये तो छोटी बात नहीं है, सबके सामने वीर स्खलित करा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो भी महादेव शिव जी का, शिव जी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, क्या मेरी हालत बना दी आपने, थोड़ा और भी कुछ कर सकते थे, कुछ तो कहीं का तो छोड़ दे, नहीं, शिव जी को बहुत गर्व हो रहा था, क्या कैसे स्वामी है, क्या मोहित किया, वाह, असंपूर्ण हो, जब आप मोहित करने पे आए तो आप ऐसा कोई मोहित कर ही नहीं सकता। तो अपनी स्थिति और भगवान की स्थिति के विषय में और अवगत हो गए और आश्वस्त हो गए। तो शिव जी की और विष्णु की स्थिति क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। वैसे तो भगवान के अनंत गुण है, अनंत शेष, अनंत काल से भगवान के अनंत गुणों का वर्णन भी करते आ रहे हैं, तभी वो समाप्त नहीं हो रहे। फिर भी रूप गोस्वामी जी ने सभी शास्त्रों को अध्ययन करके भगवान के सारे गुणों को कोई 64 गुणों का में सार दिया है कि भगवान के शिव कृष्ण के पास 64 गुण है। इस तरह से पहले 50 गुण उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे, ये 50 गुण हर जीव में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। रूप गोस्वामी कहते हैं, जीवेशु एते वसंतो अपि बिंदु बिंदु तया क्वचित परिपूर्ण तया भांति तत एव पुरुषोत्तम जीवेशु एते वसंतो अपि। ये सभी जीवों में निवास करते हैं ये 50 गुण। बिंदु बिंदु तया क्वचित, क्वचित मतलब कभी कभी लेकिन प्रदर्शित होते हैं, और किस मात्रा में, बिंदु बिंदु तया, बहुत ही छोटा एक बिंदु मात्र में। अगर भगवान गुणों के सागर है तो जीव में बिंदु के समान वो गुण है, वो भी कभी कभी प्रदर्शित होते हैं। वैसे तो भगवान की तुलना सागर करने से भी तुलना सही नहीं है, तो इस सागर की भी कुछ सीमा होती है, भगवान की कोई सीमा है ही नहीं। फिर भी भौतिक दृष्टि में जगत में सबसे बड़ा सागर ही दिखता है, महासागर। तो बिंदु बिंदु तया क्वचित, कभी कभी ये गुण दिखाई देते हैं, वो भी बिंदु मात्र। परिपूर्ण तया भांति, लेकिन ये परिपूर्ण रूप से उपस्थित है तत्र एव पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम में भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से रहते हैं। उसके बाद 50 गुण के बाद उनको स्वामी कहते हैं, अथ पंच गुणा ये स्यु अंशेन गिरीशादिशु। इन 50 गुणों के अलावा 5 गुण ऐसे हैं जो कि अंश मात्र में है। किसमें है? गिरीशादिशु। गिरीश किसको कहते हैं? शिव जी को। आदिशु मतलब ब्रह्मा इत्यादि में, जीवों में नहीं है, ब्रह्मा जी और शिव जी में ये है, लेकिन किस मात्रा में? अंश मात्रा में। तो ये 5 गुण जब बताएंगे ये केवल शिव जी और ब्रह्मा जी में है, लेकिन अंश मात्र में। ये बहुत अच्छे गुण है। क्या? सदा स्वरूप संप्राप्ता, हमेशा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, लेकिन अभी तो स्थिर नहीं रहे लेकिन अंश मात्र में है। इसलिए सर्वज्ञ, दूसरा वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, नित्य नूतना हमेशा फ्रेश रहते हैं, नूतन रहते हैं। सच्चित आनंद सांदांग्रह, सांदांग सांदा मतलब कंडेंस्ड, अंग्रह मतलब शरीर, जिनका शरीर सच्चित आनंद है, जैसे भगवान भी है सच्चित आनंद विग्रह है, तो शिव जी भी सच्चित आनंद सांदांग्रह है, एक कंडेंस्ड घने रूप है सच्चित आनंद के। जिस ढंग से कृष्ण के किसी भी चित्र में हम उनको बुढ़ापे में नहीं देखते, इसलिए शिव जी को भी हम कभी बूढ़ा नहीं देखते, वो भी हमेशा सच्चित आनंद है। सर्व सिद्धि निषेवता, और सब सिद्धियां हैं उनके पास, लेकिन क्योंकि ये 5 गुण, कौन कौन से? पहला गुण क्या था? सदा स्वरूप संप्राप्त, हमेशा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। दूसरा सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। तीसरा नित्य नूतना। चौथा सच्चित आनंद सांदांग्रह, और पांचवा सर्व सिद्धि निषेविका, सारी सिद्धियां हैं उनके पास। लेकिन सारी सिद्धियां कृष्ण शिव जी को भी योगेश्वर कहा जाता है, लेकिन सारे के सारे योग सिद्धियां, सारे के सारा ये ज्ञान जब कृष्ण के सामने आते हैं तो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। जैसे देखिए मोहिनी अवतार में ही भगवान शिव जी सब कुछ अपना सर्वज्ञ थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि मोहिनी मुझे कैसे मोहित कर देगी, और सारी सिद्धियां उनकी समाप्त हो गई, सारा धैर्य खत्म हो गया, अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहे। कृष्ण के सामने ये काम नहीं करते, क्योंकि कृष्ण में तो ये असीम मात्रा में है, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी में ये अंश मात्र है। जैसे और भी भागवत में आते हैं प्रसंग, बाणासुर के साथ युद्ध हुआ तो शिव जी ने पूरा प्रयास किया अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए, लेकिन कृष्ण के आगे कुछ नहीं चले, है ना। इसी ढंग से काशीराज थे जो शिव जी के भक्त थे, तो भगवान ने द्वारका में उसका सर काटा और भैया चलो काशी में इसको भेज देते हैं, उड़ा के द्वारका से काशी में सिर आके गिरा। सब काशीवासी सोच रहे थे शायद हमारे राजा के शत्रु का सर है, लेकिन ध्यान से देखा तो उनके राजा के ही सर था, तो वो उनकी भी रक्षा नहीं कर पाए शिव जी। तो ये 5 गुण विशेष शिव जी में है। इसके बाद जो नारायण है उनके अंदर 60 गुण है, 5 गुण और एक्स्ट्रा। वो क्या है? अविचिंत्य महाशक्ति। नारायण में अविचिंत्य हमारी सोच से परे महाशक्ति है, इनकंसीवेबल पावर है। दूसरा कोटि ब्रह्मांड विग्रह, कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं। तीसरा अवतार अवली बीजम, जितने भी अवतार हैं उसके वो बीज हैं, वहीं से उनके सारे अवतार निकलते हैं। हतारी गतिदायका, हत माने कि मारते हैं, आरे दुश्मन अपने शत्रु का भी वध करते हैं, गतिदायका उनको गति प्रदान करते हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं। आत्मा रावण गणाकर्षते, जो आत्मा राम है उनको भी आकर्षित कर लेते हैं, अमे कृष्ण किल अद्भुता, ये पांच गुण जो है ये नारायण में भी है और कृष्ण में भी है, लेकिन कृष्ण में भरपूर मात्रा में है। और उसके बाद 60 गुण हो गए और कृष्ण में 4 गुण एक्स्ट्रा, और कौन से हैं? वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य। तो ये 5-4 गुण हो गए। इस ढंग से शिवजी की स्थिति है, शिवजी जीव भी नहीं है क्योंकि जीव में केवल 50 गुण, वो भी अंश बिंदु मात्रा में। शिवजी में 5 एक्स्ट्रा गुण है जो कि अंश मात्रा में है, इसलिए शिवजी जीव और नारायण के बीच में है, जीव और विष्णु के बीच में है। तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए और इसी बात का हमें प्रचार करना चाहिए। हमें नहीं समझना चाहिए कि शिवजी भगवान नहीं है, परम पुरुषोत्तम नहीं है तो उनको हम आदर नहीं देंगे। नहीं, बहुत आदरणीय है, वैष्णव नाम यथा शंभु। शिवजी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, और साथ में वो साधारण देव भी नहीं है, साधारण जीव भी नहीं है। तो इस घटना के बाद शिवजी को अवगत हो गए अपनी स्थिति से और भगवान की स्थिति से, और जानने के बाद उनको बहुत गर्व हुआ, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ गया, उनकी भक्ति की गहराई और बढ़ गई। यह स्पष्ट होता है कि वो महामाया से प्रभावित नहीं हुए, भगवान की योग माया से प्रभावित हुए हैं। जो असुर गण थे वो भगवान की महामाया से मोहित हुए थे, क्योंकि असुर गण बाद में आपस में लड़ाई लड़ने लगे। असुर गणों ने अपने आप को बहुत ही महसूस किया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन शिव जी को ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। शिव जी कृष्ण के और निकट आ गए और उनको अपने स्वामी पर गर्व हो रहा है। ये जो गर्व है ये दो प्रकार का होता है, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। भौतिक गर्व होता है हमें अपनी संपत्ति का, धन का, ऐश्वर्य का, अपने कौशल का, अपनी विद्या का, ये भौतिक गर्व है। और भगवान को ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता? निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगता। जैसे कि इवन जो भगवान गोपियों के साथ रास भी रचा रहे थे तो गोपियों में भी गर्व आ गया, देखो हम भगवान ने पूरे ब्रह्मांड से मुझे चुना है, मैं एक ऐसी स्त्री हूं कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। जैसे ये गर्व आया भगवान अप्रकट हो गए। और श्रील प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि जब भक्तों के हृदय में अहंकार उत्पन्न होता है तो भगवान कृष्ण अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं। कृष्ण चेंजेस हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिवोटी। बोले हाँ अच्छा, इतना गर्वित हो रहे हैं, चलो फिनिश, भाग, अप्रकट हो गए। और फिर गोपियों को लग गया, हाँ जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको तुरंत रियलाइज हो जाता है हमसे क्या गलती हुई, और जिसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है उसके तो जन्म जन्म निकल जाते हैं, पता नहीं चलता अहंकार में है। इन गोपियों को तुरंत मालूम चल गया कि हमने अहंकार किया इसलिए भगवान अप्रकट हो गए। तो ये जो भौतिक अहंकार है ये हमारे भक्ति के बाधक है, लेकिन जो आध्यात्मिक अहंकार है ये वास्तविक अहंकार है, ये हमारे भक्ति का पोषण करता है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का दास हूं, ये वास्तविक अहंकार है, ये रियल ईगो है। और मैं ये शरीर हूं, मैं संसार का हूं, ये मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार भक्ति में रुकावट डालता है, वास्तविक अहंकार तो प्रेम को बढ़ाता है। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए, जिस प्रकार से शिव जी को वास्तविक अहंकार हो रहा है, अपने स्वामी पर गर्व हो रहा है, उसी प्रकार से हम भक्तों को भी ये वास्तविक अहंकार होना चाहिए। हमें भी अहंकार होना चाहिए कि हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, कितनी बड़ी बात है, सबसे ऊंचा सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु का। कितने लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते हैं, लेकिन हमें उनकी कृपा से, कॉजलेस मर्सी से हम जान पाए श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। हमें भी अहंकार होना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी की शरण में हैं। हमें भी अहंकार होना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ने का, समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें भी अहंकार होना चाहिए कि हमें भगवान का संदेश, भगवद गीता वितरण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये अहंकार की बात है कि नहीं है? ये वास्तविक अहंकार है कि मैं भगवान की सेवा में जुड़ रहा हूं। हमें भी अहंकार होना चाहिए कि इतने सुंदर भक्तों का हमें संग मिल रहा है, इतने सुंदर विग्रह का हमें दर्शन होता है, बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों को राधा राधे करने के दर्शन होते होंगे, आप सोचिए, साक्षात भगवान हम उनको देख पा रहे हैं, बहुत ही कृपावश हमें दर्शन दे रहे हैं। तो अहंकार होना चाहिए, लेकिन अहंकार अपनी योग्यता का नहीं, कृपा का, भगवान की कृपा का, भक्तों की कृपा का, गुरु की कृपा का, क्या अहंकार है। लेकिन इस अहंकार का मतलब ये नहीं कि हम डंका बजाते फिर देखो मुझसे बढ़िया कौन है, हमसे बढ़कर कौन, आप क्या हो, आप तो निकृष्ट हो, आपको दर्शन नहीं होते, आपको पता ही नहीं चैतन्य महाप्रभु कौन है। नहीं, ये अहंकार हमें विनम्र बनाता है। आगे हम देखेंगे कि भगवान शिव जी के अहंकार से बहुत आकृष्ट हुए और शिव जी का आलिंगन कर लेते हैं, शिव जी को उठाते हैं। इस अहंकार से विनम्रता आती है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी है, वो कितने महान है। वह अचिंत्य महाशक्ति, इनकंसीवेबली सुप्रीम पोटेंसी, अचिंत्य शक्तियां हैं। जिस प्रकार से भगवान अचिंत्य रूप से महान है, उसी प्रकार से जीव अचिंत्य रूप से नगण्य है। हम कल्पना नहीं कर सकते हम कितने नगण्य हैं, और हम कल्पना नहीं कर सकते भगवान कितने महान है। तो जब ये रियलाइज होगा तो हमारा हमें और आनंद आएगा। और जब तक हम इस मिथ्या अहंकार में रहते हैं, हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, तो भगवान भी खेलते हैं हमारे साथ। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, ये तो विमूढ़ है, मूढ़ भी नहीं विमूढ़ है। तो हमें अपनी गुरु परंपरा का पूरा अहंकार होना चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज अपने अंत काल में सभी गंगा के तट पे श्री छोड़ने को तैयार है, और सभी साधुगण संतगण उनको देखने आए हैं, क्योंकि एक बहुत अद्भुत घटना होने वाली है। परीक्षित महाराज भगवत धाम वापस जाने वाले हैं, और एक सांप आके उनको डसेगा, एक छोटे ब्राह्मण पुत्र ने उनको श्राप दिया। ये बहुत अद्भुत घटना थी। सभी योगी सभी ऋषिगण वहां इकट्ठे हो गए, और जब परीक्षित महाराज ने देखा सभी संतगण ऋषिगण है, तो परीक्षित महाराज ने सबको धन्यवाद किया, मैं आप बहुत कृतज्ञ हूं आप सब यहां पर उपस्थित हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये आप क्यों यहां पर आए हैं, क्योंकि मैं इतने अच्छे परिवार से हूं, क्योंकि आप सब मेरे पूर्वजों को पांडव पुत्रों को बहुत आपका स्नेह था, इसी कारण हम यहां पर आए हैं। परीक्षित महाराज ने नहीं सोचा देखो मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूं इसलिए सब ऋषिगण आए हैं, नहीं, सारा क्रेडिट किसको दिया, अपने पूर्वजों को। प्रभुपाद कह रहे हैं, जस्ट रीड बात बता रहे हैं, he therefore felt grateful to the sages for being present there at the last stage of his life, and he felt it was all due to the greatness of his late forefathers or grandfathers. ये सारे ऋषिगण आए हैं क्योंकि मेरे पितामह और मेरे परपिता बहुत ही बड़े महान व्यक्ति थे। he felt proud, परीक्षित महाराज को उस समय बड़ा अहंकार हो रहा है, therefore that he happened to be the descendant of such great devotees. कि इतने बड़े भक्तों के वो क्या है वंशज है, इस बात का उनको अहंकार था, गर्व था। सच प्राइड फॉर द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज सर्टनली नॉट इक्वल टू द पफ्ड अप सेंस ऑफ वैनिटी फॉर मटेरियल प्रोस्पेरिटी। ये जो अहंकार है ये भौतिक हमारे पास कुछ सुविधाएं हैं उसका मूल अहंकार नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं द फर्स्ट इज रियलिटी, ये वास्तविक है, वेयर द अदर इज फॉल्स एंड वेन। जो दूसरा है हमारे पास भौतिक संपत्ति का जो अहंकार है वो बेकार का है और झूठा है। और मैं परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं इतने बड़े परिवार से हूं, इतने भक्तों के वंशज हूं, ये असली अहंकार है। इसके बाद वो क्या प्रार्थना करते हैं, अपि मे भगवान प्रीता कृष्णा पांडु सुत प्रिया पैतृश्वस्य प्रीत्यर्थ तब गोत्रस्य तान बांधवा। उन्हें बोला कि श्री कृष्ण जो कि पांडु सुत प्रिय हैं, क्या कर रहे हैं हम, पांडवों के पुत्रों के जो प्रिय हैं, उन्होंने मुझे भी अपने रिश्तेदार के रूप में स्वीकार कर लिया है, केवल अपने भाइयों को और अपने कजन्स को प्रसन्न करने के लिए। ये नहीं कह रहे कि मेरे में कुछ योग्यता है, क्या कह रहे हैं कि कृष्ण जो पांडु सुत प्रिय हैं, क्योंकि वो पांडु के पुत्रों के बहुत प्रिय थे, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। पूरा का पूरा क्रेडिट अपने पूर्वजों को दिया। इसी ढंग से हमें पूरा का पूरा क्रेडिट किसको देना चाहिए, अपने गुरु परंपरा को, भगवान को और गुरु परंपरा को, बस अपना कुछ नहीं है। और ऐसा करने से हम विनम्र रहेंगे, और ऐसे अहंकार से हम भौतिक आकर्षणों से बचे रहेंगे। सामान्य दृष्टि में देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अपने भौतिक संपत्ति का अहंकार है तो क्या वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित होता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत भी मदा कुमान, जिसका अच्छे कुल में जन्म हुआ, जो सुंदर है, जो बहुत बलवान है, जो बहुत ही यशवान या बहुत अच्छा विद्या उसके पास, वो आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेता ही नहीं है। इसी ढंग से अगर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन का, गुरु परंपरा का प्रति अहंकार होगा, तो क्या हम बहुत ही जगत के प्रति आकृष्ट होंगे? नहीं होंगे। क्यों जरूरत है? मेरे पास इतना बड़ा धन है, मेरे पास रियल ट्रेजर है, तो मैं इस झूठे धन के प्रति क्यों आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। प्रभुपाद जी एक जगह कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 35वें परिहार में कि गुरुज ऑर्डर इज द प्राइड ऑफ द डिसाइपल। जो गुरु के आदेश है वो शिष्य के लिए गर्व की बात है, क्योंकि गुरु का आदेश मिला। हमें गुरु का आदेश मिलता है 16 माला ध्यान पूर्वक जप करो, 4 नियमों का पालन करो, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। ये हमारा असली धन है, हमें अपने आप को बधाई देनी चाहिए। क्या क्या आदेश मिले, क्यों ये आदेश मुझे भगवत धाम वापिस ले जाएंगे? मेरी बागडोर एक शुद्ध भक्त के हाथ में है जो मुझे ले जाएगा इस जगत से उधार करके। इस पे हमें इतना विश्वास होना चाहिए और पूरा गर्व होना चाहिए। जब ये विश्वास और गर्व होगा तो फिर हम संसार से आकृष्ट नहीं होंगे और हमेशा विनम्र रहेंगे। हमें क्योंकि इस बात पे विश्वास नहीं है और इस पे गर्व नहीं है, इसको हम असली अपना धन नहीं समझते, तभी तो बाहर के धन से आकर्षित होते हैं, बाहर की सुंदरता से आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए शिला प्रभुपाद एक बार बॉस्टन में थे और एक टैक्सी में जा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर आगे था, प्रभुपाद जी पीछे अकेले बैठे थे। तो टैक्सी ड्राइवर ने देखा एक योगी सर है कोई, बोला स्वामी यू आर अ योगी, सो कैन यू लाई डाउन ऑन अ बेड ऑफ नेल्स एंड मेडिटेट? आप एक कीलों के बिस्तर पे लेट के आप कुछ साधना कर सकते हो? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आई कैन डू इवन डिफिकल्ट थिंग्स, मोर डिफिकल्ट थिंग्स। बोले क्या, इससे क्या डिफिकल्ट चीजें क्या कर सकते हो? प्रभुपाद ने कहा, मैं कोई आप ऐसे कमरे में डाल दें जिसमें सारी नग्न स्त्रियां हैं, तब भी मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। और प्रभुपाद ने कहा, इन्हें करके भी दिखाया। प्रभुपाद के शिष्य उनको ऐसी जगह ले गए जहां पे न्यूडिस्ट कैंप था, सारे युवा युवतियां नंगे घूम रहे हैं। आप सोचिए, हम यहां प्रवचन दे रहे हैं, हम सब नंगे बैठे। प्रभुपाद ने उनको पूरा प्रचार किया और कुछ लोगों को अपने साथ लिया, भक्त बना दिया। ये क्यों? प्रभुपाद का पूरा विश्वास, पूरा गर्व है। प्रभुपाद को पूरा गर्व है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज पे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को गर्व है भक्ति लोग ठाकुर जी पे, गौर किशोरदास बाबा जी पे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु के चरणों की रज भी किसी के सर पे डाल दूंगा, वो पूरे ब्रह्मांड को उतार देगी। गर्व है, अपने गुरु के चरणों की रज पे गर्व है। जब ये गर्व होगा तो फिर ये क्या हमें संसार आकर्षित करेगा? हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं। हम भक्ति करते करते सोचते मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। कई लोग हमें बाध्य जीव को प्रकृति के तीन गुणों पर अहंकार होता है कि देखो मेरा रजोगुण क्या है। कई भक्त लोग, हम वास्तविकता बता दें अपना व्यक्तिगत अनुभव, कई भक्त लोग आते हैं और गुणगान करते हैं, मैं भक्ति में आने से पहले क्या था आप नहीं जानते, पूरा एरिया थरथराता था, कांपता था मुझसे, क्या था मैं। अरे हम जो भी थे, हम भगवान की योग माया से मोहित नहीं थे, निश्चित रूप से थे कोई। बहुत कम लोग होंगे जो भगवान की योग माया से मोहित होंगे। हम किससे मोहित थे? महामाया से। और उस महामाया से मोहित होकर जो भी कार्य किए उसके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए, ना कि गर्वित होना चाहिए। तो हमें तो प्रकृति के तीन गुणों पर अपनी नेचर पर ही अहंकार है, लेकिन अहंकार होना चाहिए वास्तविक कि मैं दास हूं, गुरु का दास हूं। और हमें अहंकार होना चाहिए कितने सुंदर भक्तों को हमें संग मिल रहा है। जब तक हम भक्तों की महानता को नहीं जानेंगे हमें पर अहंकार ही नहीं होगा। हमें तो लगता है कि हम इनसे बेहतर है। दामिनी गोस्वामी महाराज कहते हैं, फाइंड समथिंग गुड इन एवरीवन, समथिंग बेटर इन एवरीवन। सॉरी, जिस किसी को भी हम मिले, चाहे वो भक्त है, अभक्त है, गरीब है, अमीर है, जिससे भी हम मिलते हैं, रिक्शा वाले से मिलते हैं, सब्जी वाले से मिलते हैं, अपने नौकरानी से मिलते हैं, जिससे भी मिले उसमें अपने से बेहतर कुछ देखें। कैसे? उन्होंने कथा सुनाई। द्रोणाचार्य जी ने कहा, किया युधिष्ठिर और दुर्योधन को भेजा, एक असाइनमेंट दिया। युधिष्ठिर को असाइनमेंट दिया कि ढूंढ के आओ आपसे कोई निकृष्ट है। और दुर्योधन को बोला ढूंढ के आओ आपसे कोई उत्कृष्ट है। दोनों खाली हाथ वापस आ गए। दुर्योधन ने बोला कोई नहीं मिला जो मुझसे बेटर हो। युधिष्ठिर ने बोला कोई नहीं मिला जो मुझसे बदतर हो। द्रोणाचार्य मुस्कुराए, बोले युधिष्ठिर तुम राजा बनने योग्य हो और दुर्योधन तुम्हें तो गिद्ध खाएंगे, तुम उसके लिए हो। तो ये वास्तव में दामिनी स्वामी महाराज ने करके दिखाया। लॉस एंजलिस मंदिर में जब वो न्यू भक्ता इंचार्ज थे, ब्रह्मचारी थे, तो एक न्यूयॉर्क से एक सन्यासी आए, मायावादी सन्यासी। ये मायावादी सन्यासी अपने समय के बहुत विख्यात सन्यासी थे, बहुत बड़े योगी थे, बहुत तपस्या करते थे। और वो लॉस एंजलिस मंदिर में घूमने आए और घूमते घूमते वो दामिनी गोस्वामी महाराज के कमरे में आए। वो ब्रह्मचारी थे। दामिनी गोस्वामी महाराज तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया। तो बड़े हैरान हो गए। तो उनको हैरान देकर दामिनी स्वामी महाराज ने बोला कि हमारे को ऐसा सिखाया गया कि सन्यासी को ऐसे ही आदर देना है। तो बड़े इंप्रेस हुए और धीरे धीरे उन्होंने पूछना शुरू किया, भक्ति का सिद्धांत पूछना शुरू किया और इंप्रेस हुए। इतने प्रभावित हो गए कि अपना जो मायावादी का उन्होंने मठ खोला हुआ था उसको छोड़ दिया, अपना सन्यास त्याग दिया और प्रभुपाद जी के आंदोलन में एक न्यू भक्ता बन के ज्वाइन कर लिया। आप सोचिए, इतने बड़े योगी मठाधीश छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बन गए, दामिनी गोस्वामी महाराज के अंदर न्यू भक्ता बन गए और ट्रेनिंग ली पूरी, प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी। उसके बाद उनका भी संन्यास हुआ है, वो है इसोलियस अमल भक्त स्वामी महाराज। कैसे? ये प्रैक्टिकल है ना। हमारा सिद्धांत जैसे मुगलीला बहु कह रहे थे, वी हैव द हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट फिलोसफी, बट हायर देन द हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट फिलोसफी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हाइएस्ट फिलोसफी, है ना। हमने करके दिखाया। इसी ढंग से अगर हमें सुरक्षित रखना है महामाया के प्रभाव से तो योग माया के अंदर आना पड़ेगा। योग मा जीव को किसी ना किसी माया में रहना ही है। और सबसे सुंदर तरीका योग माया के अंदर रहने का कि अपने आप को दास माने। जीव कृष्ण दास यही विश्वास और दुख नहीं। सारे के सारे संसार में दुख इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, कृष्ण से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को पूरा गर्व था, प्रभुपाद को पूरा विश्वास था। एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे 1973 में और एक बहुत बड़े फिलोसफर डॉक्टर बेनफोर्ड से उनकी मुलाकात थी। ये जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में काफी वार्तालाप सुंदर तरीके से दी गई है। डॉक्टर बेनफोर्ड ने प्रभुपाद से पूछा, तो स्वामी जी आपका और आपके शिष्यों का क्या होगा? अरे क्या होगा, प्रभुपाद ने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला, वी आर गोइंग बैक टू गॉड, हम तो भगवत हम वापिस जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी नो एवरीथिंग, वी नो कृष्णाज नेम, वी नो कृष्णाज एड्रेस, वी नो कृष्णाज एक्टिविटी एंड कृष्णाज श्योर जन्म कर्म च मे दियम एवं यो वेति तत्वता, जो ये सब कुछ जानता है वो मेरे पास आएगा, तो हम तो जा रहे हैं। कितना प्राइड था प्रभुपाद को, कितना कॉन्फिडेंस था। न्यूयॉर्क में एक रिपोर्टर प्रभुपाद से मिले, बोले स्वामी जी व्हाई हैव यू कम हियर, आप यहां क्यों आए हैं? उन्होंने बताया आई हैव कम हियर टू शो दैट गॉड इज ए लिविंग पर्सन एंड वी कैन लिव विद हिम। भगवान एक व्यक्ति है, बोले बट वेयर डज द गॉड लिव, गॉड रहते कहां है? प्रभुपाद के सामने भगवदगीता पढ़ गई, इन भगवदगीता एज इट इज, वो हैरान हो गया, किताब के अंदर भगवान इस गॉड इज इन साइड द बुक। प्रभुपाद ने बड़े कॉन्फिडेंटली बड़े एश्योरेंस से बोला यस। उसने चुपचाप गीता खरीद ली। तो ये कॉन्फिडेंस, ये प्राइड हमें होनी चाहिए। ये प्रभुपाद के शास्त्र साधारण शास्त्र नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है शुद्ध भक्तों को? क्योंकि वो जानते हैं अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण मेरी जरूर रक्षा करेंगे। हम लोग कृष्ण बाना भावित में हैं, हमने दीक्षा ले ली। एक सबसे मूल सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, वो मूल सिद्धांत ये है कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। कृष्ण हमेशा मुझसे प्रेम करते रहेंगे। इस संसार में जितनी उथल पुथल हो जाए कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे क्योंकि मुझसे प्रेम करते हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं द फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ कृष्णा इज टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। सबसे प्रमुख बात है भगवान के एजेंडा में अपने भक्तों की रक्षा करना। हमें निश्चिंत होना चाहिए, बस मार्केट में जो मर्जी होता रहे, जितना मर्जी धन छीन ले सरकार, जो भक्त मोहित नहीं होंगे। साधारण व्यक्ति का तो हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन भक्तों को पूरा विश्वास है कि कृष्ण मेरा और मेरे परिवार की पूरी देखभाल करेंगे। बड़े बड़ी घटनाएं होती हैं भक्तों के जीवन में, भक्त मोहित नहीं होते। उदाहरण के लिए मृगारी और नारद मुनि से मिले। मृगारी अपने खानदान का पालन पोषण करता था, हत्या करके अधमरा छोड़ देता जीवों को। नारद मुनि को इतनी दया उत्पन्न कि बोले क्या कर रहे हो भाई, या तो पूरा मारो या छोड़ो। बोले नहीं मुझे जब तो ये तड़पते हैं तो मैं बहुत हंसता हूं, बहुत खुशी होती है। नारद मुनि बोले गलत है, बहुत पाप है इसमें। तो बोले फिर क्या करूं? बोले इसी समय धनुष को तोड़ दो। वो धनुष उसके लिए समझ लीजिए बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ा इंडस्ट्री थी धनुष उसके लिए, उसी से उसका परिवार चलता था। मृगारी थोड़ा हिचकिचाया, धनुष तोड़ दूंगा तो मेरे परिवार का पालन कैसे होगा? नारद मुनि ने बड़े गर्व से कहा मैं करूंगा पालन, तोड़ो उसको। नारद मुनि सन्यासी है, घूमते रहते हैं, नारद मुनि के पास कौन से भंडार हैं धन के? कॉन्फिडेंटली बोला मैं करूंगा तोड़ो, क्योंकि नारद मुनि का विश्वास था नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतना नाम एको बहुनाम्य विदधाति कामा। अरे प्रभुपाद मां लिख रहे हैं द सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट द मेंटेनर ऑफ आवर फैमिली, कृष्ण इज द मेंटेनर ऑफ आवर फैमिली। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी इफेक्टिव थोड़ी मेरे परिवार को पालती है। तोड़ो इस धनुष को। नारद मुनि ने इतने कॉन्फिडेंटली बोला, इतने गर्व से बोला, मृगारी ने तुरंत धनुष तोड़ दिया। बोला अब क्या करना है? बोलो तुलसी का पौधा लो, जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मृगारी को इतना खाने को मिला ना उसने खुद और उसकी पत्नी ने खाया, बल्कि उसने फूड फॉर लाइफ भी शुरू कर दिया। जो भी उसके बाद दर्शन करने आता था उसको प्रसाद वापिस देता था। तो ये विश्वास होना चाहिए। और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है, कितना विश्वास है भगवान में, क्यों घबरा रहे हो? अवश्य रखे भाई कृष्ण। आज से कोई 15-16 साल पहले मफताल इंडस्ट्रीज बिल्कुल डूब गई थी, अरविंद मिल्स आप जानते हैं। और मफताल इंडस्ट्री के जो मालिक है वो बहुत अच्छे भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं। तो वो फिर भी रोए आते थे मंदिर में, वैसी सेवा कर रहे थे बॉम्बे में। तो भक्तों ने उसे पूछा आपकी तो इंडस्ट्री पूरी ठप हो गई, आप तो परेशान नहीं है? बोले क्या चाहिए मुझे? 2 रोटी चाहिए और 6 फीट जमीन चाहिए, ये तो मिली जाती है मुझे। जब ठीक होना होगा हो जाएगा, और कुछ ही सालों में फिर से इंडस्ट्री ठीक हो गई उनके, और फिर वैसे ही है मेरे को। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा हम पे, लेकिन हमें इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं प्रभावित नहीं होना। कौन है? भगवान मेरे साथ है, मेरे और मेरे परिवार की पूरी रक्षा करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रिएक्शन यही होगा कि हम बिबिल्डर हो जाएंगे, हम मोहित हो जाएंगे। हमें मोहित करने के लिए मोहिनी अवतार की आवश्यकता नहीं है। एक 500 नोट के ऊपर गांधी जी वही हमें मोहित कर दिया, क्या है हमारे लिए कुछ सुंदर स्त्री रहने की आवश्यकता थोड़ी है। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और गर्व होना चाहिए। ये गर्व, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कब मुझे ये गर्व होगा, असली अहंकार होगा, कब मैं मिथ्या अहंकार त्यागूंगा। और इस मिथ्या अहंकार को त्यागने के लिए क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये देखिए, ये शास्त्रों में बताया गया है कितनी बड़ी बात हम मांग रहे हैं। हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। एक छोटी बात है, आप किसी बड़ी कंपनी में जाइए सेवा मांगिए नहीं मिलेगी। IAS के ऑफिसर बनने का प्रयास किए सेवा नहीं मिलेगी। आजकल बड़े बड़े इंजीनियर्स भी क्या कर रहे हैं, क्लर्क बनने को तैयार है गवर्नमेंट ऑफिस में, नहीं मिल रहा। सेवा वो किसकी चाह रहे हैं? परम सरकार की, परम सत्य की सेवा चाह रहे हैं। ये कहते हैं छोटे मुंह बड़ी बात, छोटे मुंह बड़ी बात है ना। अपने आप को देखें हमारे में क्या शुद्धता है, फिर भी। और ये सारा अधिकार किससे मिला हमें? गुरु परंपरा से। हमें यही सोचना चाहिए कि पूर्व जन्म के मेरी सुक्रिया थी, अहो पक्षपाचो अतो करिया, जब जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पूस तपोस ते जोहो ससनूर आर्या ब्रह्मानुचूर नाम प्रणा दिए थे। कि जिसने पूर्व जन्म में सारे वैदिक शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, जिसने बड़ी सभी नदियों में स्नान कर लिया है, सारे यज्ञ अनुष्ठान कर लिए हैं, बड़ी बड़ी तपस्या की है, बड़े दान दिए हैं, उसके मुख पे, उसकी जीवा पे कृष्ण का नाम आता है। मैंने शायद कर लिए होंगे तभी मुख पे जीवा का नाम आ रहा है, नहीं। ये केवल कॉजलेस मर्सी है, अहेतु की कृपा है, इसलिए हम ले पा रहे हैं। वो इसका हमें गर्व होना चाहिए। इतना बड़ा महामंत्र हम जप कर सकते हैं, हम भगवान से निवेदन कर सकते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। और जिस जन से भक्त को भगवान पे और गुरु पे अहंकार होता है, गर्व होता है, उसी प्रकार से गुरु को विशिष्य पे गर्व होता है। भक्ति सिंह ठाकुर महाराज कहते थे इस ढंग से सेवा करो कि भगवान आपको देखने आए। इस ढंग से सेवा करो कि गुरु हमारा गुणगान करे हमारी एब्सेंस में। एक बार क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद जी जब पहला मायापुर फेस्टिवल हुआ 1972 में, तो आपने घटना सुनी होगी, बहुत ही रोचक घटना है। मालती माता जी थी जो प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करती थी। अब उस समय कोई फैसिलिटी नहीं थी मायापुर में 1972 में, तो मालती माता को कुकिंग करने के लिए ट्रेजर खजांची के पास जाना पड़ता था पैसे लेने के लिए, सब्जी खरीदनी है, आटा दाल चावल खरीदने हैं रोज के रोज। और खजांची को इस ढंग से ट्रेन किया हुआ था कि किसी को पैसा नहीं देना, उसकी ये सेवा थी, क्योंकि हाथ बहुत टाइट था उसमें। तो माता जी आती थी, पैसे दो, यही ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, वो उनको उतना पैसा देते थे जो लोकल को देंगे। अगर कोई लोकल बंगाली व्यक्ति जाएगा रिक्शा वाले के पास, सब्जी वाले के पास, उसको जो रेट लगते थे उतने पैसे देते थे। और ये अमेरिकन थे, ये बेचारी जाती थी पहले नवदीप घाट पे, फिर वहां आगे जाके नाव क्रॉस करके फिर सब्जी वाले के पास जाती थी। रिक्शा वाला चेंज ही करता था क्योंकि विदेशी को देखकर, उससे बहस करते थे, फिर सब्जी वाले से बहस करती थी, पूरा मॉर्निंग उनका बहस में निकल जाता था थोड़ा पैसे के लिए। वापिस आती थी, छोटी बच्ची थी, पति थी उनकी देखभाल करने। फिर अब कुकिंग शुरू करना, कुकिंग शुरू करने के लिए पानी चाहिए, पानी हैंडपंप दूर, हैंडपंप के पास दूर जाना, आसपास कीचड़ ही कीचड़। वो माता जी किसी ढंग से वहां पानी भर के लाती थी, और फिर जो अंगीठी थी वो दो बाल्टियों में कोयला डाल के अंगीठी चलाते थे। और जब अंगीठी जलाया किया, जब बिल्कुल गर्म हो गई, तभी भाग के कोई शिष्य आए थे प्रभुपाद के सेक्रेटरी, अरे प्रभुपाद ने स्नान करने थे, दो बाल्टियां, वो बाल्टी ले आते थे। बेचारे बड़े परेशान, और प्रभुपाद बड़े पर्टिकुलर थे, बिल्कुल टाइम पे प्रसाद चाहिए, एक सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद मसाज करते थे, स्नान करते थे, गायत्री करते, तुरंत थाली सामने होनी चाहिए, नहीं तो बहुत गुस्सा होगा। कुछ भी हो जाए प्रसाद कभी लेट नहीं होगा। और मानती माता रात से प्लानिंग शुरू करती थी, क्या बनाऊं, किस समय करूं, जल्दी हो जाए, एकदम इतना टेंशन में, किसी ना किसी ढंग से प्रसाद टाइम पर पहुंचा देती थी। और जब प्रभुपाद खाते थे, क्या है, नमक नहीं डाला इसमें आज, नमक ठीक नहीं है, दूसरे दिन बेचारी नमक डाला, बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, क्या करती है तुम? तो मानती माता ने सोचा ये सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी। रात सुबह से उठकर रात तक सोचते हुए सपने में ये सोचती रहती, प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न करूं, ये प्रसन्न ही नहीं हो रहे, मैं सेवा के लायक ही नहीं, छोड़ दूंगी। ऐसा कहने ही जा रही थी, प्रभुपाद ने बुलाया, देखो कल गोड़िया मठ से सन्यासी आ रहे हैं और ये बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाना, ठीक है, क्या करूं, चलो इसके बाद परसों बना दोगे। फिर बचाए बहुत मेहनत की, किसी से सारे डिशेस बनाए, और कमरा छोटा सा था, प्रवेश करने लगी, सारे बड़े बड़े सन्यासी डंडा लेके बैठे हैं, बड़ी घबराई, एक अकेली महिला सर ढक के बड़ी डरते 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 अंदर गई। उनको लगा ये कमरा बहुत बड़ा लंबा रास्ता है। और प्रभुपाद के सामने थाली रखी, बड़ी मुश्किल से परोस रहे थे। प्रभुपाद ने सब सन्यासियों को कहा, शी कुक्स फॉर मी एंड आई ऑलवेज क्रिटिसाइज हर, बट आई नो She can split her throat for me. किसी भी समय ये अपना गला, अपने गर्दन मेरे लिए काट सकती है, और मैं भी अपने गर्दन इसके लिए काट सकता हूं। गर्व था प्रभुपाद को मानती माता पे, कि मैं तो उसको डांटता हूं लेकिन मेरे लिए अपनी जान दे सकती है, और मैं भी अपनी जान इसके लिए दे सकता हूं। ये होता है गुरु और शिष्य का ये संबंध, क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पित। तब मालती माता ने सोचा कि मैं कैसे सोचती थी, और उनके अंदर दोबारा शक्ति आ गई, बोले अब जो जो मर्जी, इतना मर्जी तंग करे मुझे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। इसी ढंग से कैसे ये असली अहंकार हमारे अंदर विनम्रता लाता है। प्रभुपाद अपने पाश्चात्य देशों के शिष्यों को बहुत गर्वित थे, हालांकि उनको डांटते रहते थे, लेकिन कोई सामने का व्यक्ति आता था उसको इतना गर्वित होकर सुनाते थे कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया। और एक बार अपने रूम में बैठे थे प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ, प्रभुपाद ने अपना हृदय खोला, प्रभुपाद ने बोला मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था 1922 में, मैं उसका आदेश शुरू कर पाया 1965 में, 43 साल मैंने कुछ नहीं किया, आई एम यूजलेस, और इसीलिए क्योंकि मैं गुरु का मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है उनके मिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सब उन्होंने आपको भेजा है मेरी सहायता करने के लिए, ताकि मैं उनका मिशन कर पाऊं। देखिए ये विनम्रता आती है, अगर हमें पूरा अहंकार है, अपने गुरु गर्व है गुरु के आदेशों के ऊपर, तो इस ढंग से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कब हम अपने अंदर ये असली गर्व को विकसित कर पाएंगे। भगवान को भी अपने शुद्ध भक्तों पर अहंकार होता है, जैसे कि भगवान नरसिंह देव जी प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं, जब प्रहलाद महाराज ने निवेदन किया कि आप मेरे पिता का उद्धार कर लीजिए, तो नरसिंहदेव भगवान बता रहे हैं सातवें स्कंध के दसवें अध्याय के किसवें श्लोक में, भवन्ति पुरुषा लोके मद भक्तास्तवा त्वम अनुप्रिता भवान में खलु भक्ता नाम सर्वेशां प्रति रूपत्रिका। जो तुम्हारे उदाहरण का को फॉलो करते हैं वो स्वाभाविक रूप से मेरे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। भक्तों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे सुंदर अच्छे उदाहरण हो और सबको आपके चरण चंद्र पद चिन्हों पर चलना चाहिए। भगवान बता रहे प्रहलाद महाराज को कि आप भक्तों में सबसे उत्तम उदाहरण हो। तो इसलिए आज के श्लोक से हम सीखते हैं कि हमें एक दिखा चर्चा की हमने शिव जी की क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है, इससे हम जान सकते हैं हमारी क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है। हम अचिंत्य रूप से नगण्य हैं और भगवान अचिंत्य रूप से महान है और यही असली अहंकार है। ये जितना साक्षात्कार हमें होगा, जितना हमें अपने गर्व होगा अपने गुरु परंपरा पे भगवान की कृपा के ऊपर, उतना हमारा साक्षात्कार होगा, उतना हम भक्ति में आनंद का अनुभव करेंगे, उतनी हमारे में विनम्रता आएगी और उतना हम किसी भी परिस्थिति का हम सामना कर पाएंगे। और जब तक हम मिथ्या अहंकार में रहेंगे हमें संसार हमेशा प्रताड़ित करता रहेगा। तो हम शिव जी जो कि मिथ्या अहंकार के अधिष्ठाता हैं उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे इस मिथ्या अहंकार को हरे और हमारे अंदर असली अहंकार संचालित करें, जिससे कि हम भगवान की और पूरी गुरु परंपरा की सेवा उत्साह पूर्वक करते रहे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो अमृत मंथन बोलो। हाँ, ब्रह्मा जी जीव तत्व भी होते हैं, कई कई बारी विष्णु तत्व भी होते हैं और ब्रह्मा जी को स्पेशल एम्पावर किया गया। अगर वो जीव तत्व भी होते हैं तब भी उनमें पांच गुण होते हैं, कभी शेष गुण। माइक कह रहे हैं कि हमारा हृदय में अच्छी भावना होती है किसी के व्यक्ति, लेकिन उसको हम प्रकट नहीं कर पाते। हाँ, तो इससे क्या होता है? हाँ, जरूर प्रकट करना चाहिए, नहीं तो इजहार नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है? तो करना चाहिए, कम्युनिकेट जरूर करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे अंदर की भावना को समझते हैं, जानते हैं, तो अपना जो हमारा प्रेम है, जो उनके प्रति स्नेह है, अवश्य प्रकट करना चाहिए सेवा के माध्यम से।
हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्लास। प्रभु जी, यू आर स्पीकिंग अबाउट द रियल ईगो एंड द फॉल्स, यू आर स्पीकिंग अबाउट द रियल ईगो एंड द फॉल्स ईगो। तो प्रभु जी, वी ऑल often we hear ki a devotee has to be best in everything that he does, so that implies that he has to do better in his material activities also. So actually in general sense, a person who is very hard working is considered it's a good attribute to have, you know, that wo bahut mehnati hai to ye bahut achhi hai, right? Generally it's considered kiya jata hai, but there is another aspect, the person is over endeavor is considered very bad for devotional service. One should not over endeavor for material things. So, but if a devotee has to be excel in material activities, then he has to be, you know, he has to put his endeavor also over there. And so how do we balance this issue that one should not over endeavor, at the same time he has to excel in his material activities so that he can, you know, put good example for others, at the same time, you know, so.
हाँ, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कितनी मेहनत करें अपने कार्य में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, एक अच्छा उदाहरण भी बने और साथ साथ में अत्यधिक प्रयास भी ना हो जाए, भक्ति पे प्रभाव पड़े। एक प्रश्न आपका। कोई भक्त को अच्छा धारणा होना चाहिए, भक्त का मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री में जाके चुपचाप माला करे, कुछ कार्य ना करे, सुस्त रहे। तो संतुलन, बैलेंस, बैलेंस बहुत जरूरी है। और ठीक है, दूसरों के सामने हमें अच्छा एग्जाम्पल बनना है, लेकिन हमारे लिए सबसे प्रमुख है हमारे गुरु और वैष्णव, उनकी आज्ञा के अनुसार हमें बैलेंस अपने जीवन में निर्धारित करना चाहिए। तो अगर उनकी आज्ञा है नहीं, कई बार गुरु के आदेश होते हैं, जस्ट बी अ बेस्ट स्टूडेंट इन द कॉलेज और या बेस्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलिस्ट, तो अलग बात है। अगर ऐसा कोई आदेश नहीं है तो हमें संतुलन होना चाहिए। ऐसे प्रयास से कोई लाभ नहीं जैसे हम अच्छे ढंग से जप नहीं कर पाए, सही ढंग से भक्तों का संग ना कर पाए। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा और व्यक्ति विशेष के अनुसार उसको अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी है। सो डिस्कस, आप अपने मेंटर से चर्चा करके एक कितना करना चाहिए, संतुलन लाना चाहिए, बहुत जरूरी है।
हरे कृष्ण भाई, बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत सुंदर था। ये चीज जो मुझे कंफ्यूजिंग लग रही है कि जैसे भगवान की सारी लीलाएं तरंगा शक्ति के अंदर होती है, आपने बताया कि जो मोहिनी अवतार लिया उन्होंने, जब उन्होंने असुरों को मोहित किया था, तो वो बहिरंगा शक्ति के अंदर था, कैसे?
हाँ, जैसे हम देखते हैं कि भगवान महाभारत में दुर्योधन के सामने भी आए, अपना विराट रूप भी दिखाया, लेकिन दुर्योधन को लगा नहीं, दुर्योधन की माया है, ये तो माया भी है, वो जादू दिखा रहा है। आज जानते माँ मुंडा मानुषम तनुवाशित भगवान थे, प्रभुपाद करते खाली 125 लोग जानते थे ये भगवान सबके सामने घूम रहे थे, रोज आते रहते थे मथुरा से हस्तिनापुर, मथुरा रोड से हरियाणा का मतलब यही हरियाणा, हरि आ रहा है, देखते थे सब, बहुत कम लोग पहचानते थे भगवान। तो योग, भगवान तो अपनी योग माया से ही अवतरित होते हैं, लेकिन हम किस माया के अंदर है वो निर्भर करते हैं। यस माता जी, हाँ
मिथ्या अहंकार से रक्षा होती है हरि नाम से, लेकिन कभी हरि नाम कहते कहते अहंकार आ जाता है कि मेरी माला सुबह जल्दी हो जाती है, मैं डेली 25 राउंड कर रहा हूँ, मैं 32 कर रही हूँ, इस तरह से यही अहंकार बढ़ जाता है, इससे कैसे?
ये तो हम बदजीवों को तो मौका चाहिए गर्वित होने का मौका चाहिए, और मन हमारी कमजोरी जानता है, कुछ भी हो जाएगा, अच्छा कीर्तन कर लेंगे तो अहंकार है, अच्छा श्रृंगार करेंगे तो अहंकार है, अच्छे ढंग से बात कर लेंगे तो अहंकार, अच्छा लेक्चर देंगे तो अहंकार है, तो तुरंत मौका ढूंढ रहे, तुरंत गर्वित होने का, इसलिए बड़ा कॉशियस रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सेवा बंद कर दें, जब करना छोड़ दें, ये सब छोड़ दें कि अहंकार बढ़ता है जब से सेवा करते रहे, लेकिन अपने आप को प्रार्थना कर करके करें, है ना, कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। तो धीरे 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 भगवान से प्रार्थना करेंगे, मेरे में शक्ति नहीं है, भगवान ही हमें साक्षात्कार देगा। इट्स ऑल प्रेयर्स, प्रार्थना है और प्रयास है, करते रहे। एक और बात जैसे बताना भूल गया, महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम बोला अपने गुरु के आदेशों पे हमें अहंकार होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं गुरुवाद फैलाए कि मेरे गुरु बेहतर है, मेरे गुरु के आदेश वाला ये कुछ स्पेशल है, आपके गुरु ऐसे है, हम सब प्रभुपाद जी की छत्र छाया में है, जो कि नवदेशी भक्त बहुत ज्यादा अपनी गुरु भक्ति दिखाने के चक्कर में, तो वो जानते नहीं गुरु भक्ति क्या है। तो गुरु के आदेशों पे गर्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें लड़ना शुरू कर दें, मेरे गुरु के आदेश ज्यादा अच्छे हैं तुम्हारे गुरु के आदेश से। हम सबके परम गुरु कौन है? इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, और सब जो शिष्यगण जो गुरु की सेवा कर रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कैसे प्रभुपाद जी की शरण में और चले। तो इसको मैच्योरिटी से, परिपक्वता से इन बातों को समझना है, ना केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर समझने का प्रयास करना। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, गो प्रेमानंदे।